नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। कैट डेवलिन की टर्न्ड ऑन, साइंस, सेक्स एंड रोबोट्स, तकनीक, मानवीय अंतरंगता और सामाजिक कल्पना के संबंध पर केंद्रित एक लोकप्रिय विज्ञान पुस्तक है। इसका विषय केवल ह्यूमनॉइड सेक्स रोबोट नहीं, बल्कि यह व्यापक प्रश्न है कि लोग मशीनों, डिजिटल पात्रों और कृत्रिम साथियों के साथ भावनात्मक तथा यौन संबंध क्यों और कैसे बनाते हैं। AI और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की शोधकर्ता डेवलिन प्राचीन मिथ को, मध्यकालीन ऑटोमेटा, विज्ञान कथा, आधुनिक सेक्स टेक और रोबोटिक्स को साथ रखकर इस विषय की जांच करती हैं। पुस्तक सनसनीखेज भविष्यवाणियों के बजाय वर्तमान तकनीक की सीमाओं और उसके इर्द गिर्द बने सांस्कृतिक भय पर जोर देती है। इसमें जेंडर विविधता, निगरानी, हिंसा, सहमति और देखभाल जैसे प्रश्न भी शामिल है। डेवलिन का मूल उद्देश्य पाठक को यह समझाना है कि सेक्स रोबोट पर बहस वास्तव में मनुष्यों की इच्छा, अकेलेपन, संबंधों और तकनीक से अपेक्षाओं पर बहस है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सेक्स रोबोट की कल्पना तकनीक से पुरानी सांस्कृतिक विरासत है। डेवलिन दिखाती है कि कृत्रिम प्रेमी या मानवाकार साथी का विचार नई रोबोटिक्स की देन नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन मिथकों, यांत्रिक प्रतिमाओं, ऑटोमेटा और बाद की विज्ञान कथाओं में मिलती हैं। यह ऐतिहासिक दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आज के सेक्स रोबोट को अचानक आई नैतिक आपदा या केवल बाजार की नई वस्तु मानने की प्रवृत्ति कमजोर पड़ती है। अलग अलग युगों में लोगों ने निर्जीव वस्तुओं में जीवन, इच्छा और संगति की कल्पना की है। आधुनिक रोबोट इन पुरानी कल्पनाओं को सेंसर, सॉफ्टवेयर, आवाज और बातचीत की क्षमता के साथ नया रूप देते हैं। पुस्तक विज्ञान कथा के प्रभाव को भी गंभीरता से लेती है। फिल्मों और टीवी में दिखने वाले सुंदर, स्वायत्त और भावनात्मक मशीन पात्र आम लोगों की अपेक्षाएं बनाते हैं, जबकि वास्तविक उत्पाद प्रायः सीमित संवाद, सरल मोटर गतिविधियों और ऐप आधारित व्यक्तित्व तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए डेवलिन कल्पना और तकनीकी वास्तविकता के अंतर को रेखांकित करती है। उनके अनुसार, यह अंतर समझे बिना ना तो जोखिमों का सही आकलन हो सकता है, ना संभावित उपयोगों का। इतिहास यह भी बताता है कि हमारी चिंता मशीन के बारे में कम और इस बारे में अधिक है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, नियंत्रण की आकांक्षा और संबंधों की परिभाषा को मशीनों पर कैसे प्रक्षेपित करता है। दूसरा, भावनात्मक लगाव के लिए मशीन का सचेत होना आवश्यक नहीं है। पुस्तक का केंद्रीय मनोवैज्ञानिक तर्क है कि इंसान गैर मानव चीजों के साथ वास्तविक भावनात्मक लगाव बना सकते हैं। लोग पालतू प्राणियों, प्रिय वस्तुओं, काल्पनिक पात्रों और डिजिटल जीवों के प्रति देखभाल, दुख या स्नेह महसूस करते हैं। डेवलिन इसी संदर्भ में टैमागोची प्रभाव का उल्लेख करती है, जहां साधारण डिजिटल प्राणी भी उपयोगकर्ता में जिम्मेदारी और लगाव जगा सकता है। बम निष्क्रिय करने वाले रोबोट के नष्ट होने पर सैनिकों द्वारा शोक व्यक्त करने जैसी घटनाएं भी बताती हैं कि उपयोगिता और भावनात्मक संबंध एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि रोबोट मनुष्य जैसा प्रेम महसूस करता है। डेवलिन स्पष्ट करती है कि मौजूदा AI प्रणालियां भावनाओं या चेतना का अनुभव नहीं करती, वे भावनात्मक प्रतिक्रिया का अनुकरण करती है। फिर भी उपयोगकर्ता की अनुभूति को केवल इसलिए झूठा नहीं कहा जा सकता कि संबंध एकतरफा है। मानवीय भावनाओं का मूल्य हमेशा पारस्परिकता से तय नहीं होता। जैसे किसी दूर के कलाकार या काल्पनिक चरित्र के प्रति लगाव भी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए अर्थपूर्ण हो सकता है। यह दृष्टि बहस को इस प्रश्न से हटाती है कि मशीन सचमुच प्रेम करती है या नहीं, और इस प्रश्न पर ले जाती है कि डिजाइन किए गए भावनात्मक संकेत मनुष्यों के व्यवहार, अपेक्षाओं और कमजोरियों को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा, वर्तमान सेक्स रोबोट की सीमाएं भविष्य की सनसनी से अलग हैं। डेवलिन तकनीकी प्रचार और वास्तविक क्षमता के बीच स्पष्ट अंतर रखती है। लोकप्रिय संस्कृति अक्सर सेक्स रोबोट को ऐसे स्वायत्त साथी के रूप में दिखाती है जो चल सकता है, समझ सकता है, इच्छा व्यक्त कर सकता है और गहरे संबंध निभा सकता है, लेकिन पुस्तक के संदर्भ में उपलब्ध तकनीक ऐसी परिपक्व स्थिति में नहीं थी। जिन उत्पादों को रोबोट कहा जाता था, उनमें अक्सर रोबोटिक विशेषताएं सीमित थीं, जैसे सिर या चेहरे की कुछ गतियां, पूर्व निर्धारित संवाद और फोन ऐप के माध्यम से संचालित कृत्रिम व्यक्तित्व, पूर्ण शरीर की स्वायत्तता, विश्वसनीय समझ और स्वतंत्र सामाजिक व्यवहार अभी बहुत दूर थे। यह यथार्थवादी दृष्टि दो उपयोगी काम करती है। पहला, यह उन दावों से बचाती है कि रोबोट तुरंत मानव संबंधों का स्थान ले लेंगे। दूसरा, यह बहस को केवल हार्डवेयर से आगे ले जाती है। किसी मशीन का प्रभाव उसके चलने फिरने से ही नहीं, बल्कि उसकी आवाज, व्यक्तिगत जानकारी याद रखने की क्षमता, उपलब्धता और उपयोगकर्ता की कल्पना से भी बन सकता है। डेवलिन यह भी संकेत देती है कि यह क्षेत्र संभवतः एक सीमित बाजार रहेगा, न कि अनिवार्य रूप से हर घर की तकनीक। अतः नीतिगत और नैतिक विचार को काल्पनिक अत्यंत उन्नत मशीनों के बजाय आज के जुड़े हुए सेक्स टॉय संवादात्मक एआई और डेटा संग्रह करने वाले प्लेटफॉर्म से शुरू करना चाहिए। चौथा, जेंडर और डिजाइन तय करते हैं कि कृत्रिम अंतरंगता किसके लिए बनेगी। डेब्लिन सेक्स रोबोट के डिजाइन को तटस्थ इंजीनियरिंग निर्णय नहीं मानती। जब उत्पादों की कल्पना मुख्यतः विषमलैंगिक पुरुष उपभोक्ता के लिए स्त्री शरीर के रूढ़ छवियों पर आधारित होती है, तो वे जेंडर इच्छा और उपलब्धता के पुराने सत्ता संबंधों को दोहरा सकते हैं। इसी कारण पुस्तक उस धारणा पर सवाल उठाती है कि सेक्स रोबोट का स्वाभाविक रूप एक अत्यंत यथार्थवादी द्विआधारी और आज्ञाकारी मानव प्रतिरूप ही होना चाहिए। मशीन को किस शरीर, आवाज, व्यक्तित्व और सीमाओं के साथ बनाया जाए, यह सामाजिक मूल्यों का प्रश्न है। उनका वैकल्पिक आग्रह अधिक विविध और कल्पनाशील तकनीक की ओर है। कृत्रिम अंतरंगता को केवल मानव साथी के विकल्प या यौन वस्तु के रूप में देखने के बजाय उसे देखभाल, संचार, कल्पना और अलग अलग जरूरतों के अनुकूल अनुभवों के रूप में समझा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर तकनीकी रूप अपने आप मुक्तिकारी होगा। यदि डिजाइन टीमों में विविधता न हो तो पक्षपात नए रूपों में लौट सकता है। इसलिए डेब्लिन की बात तकनीक के पक्ष या विरोध की सरल घोषणा नहीं है। वह विकास प्रक्रिया में महिलाओं, अलग जेंडर पहचानों और विविध उपयोगकर्ता अनुभवों की भागीदारी की मांग है, ताकि बाजार की पुरानी धारणाएं भविष्य की अंतरंग तकनीक की सीमा ना बन जाएं। अंत में थेरेपी, सहमति, हिंसा और डेटा गोपनीयता की नैतिक कसौटी। पुस्तक सेक्स रोबोट के संभावित चिकित्सकीय या सहायक उपयोगों को खारिज नहीं करती। ऐसे लोग जो बीमारी, विकलांगता, सामाजिक चिंता, आघात या अन्य परिस्थितियों के कारण पारंपरिक संबंधों तक सहज पहुंच नहीं बना पाते, उन्हें तकनीक से संगति, संवाद या यौन अभिव्यक्ति का एक माध्यम मिल सकता है। डेब्लिन इस संभावना को गंभीरता से देखती हैं, पर इसे सार्वभौमिक समाधान के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। यह मान लेना कि रोबोट अपने आप अकेलापन, यौन हिंसा या वेश्यावृत्ति जैसी जटिल सामाजिक समस्याएं समाप्त कर देंगे, अत्यधिक सरलीकरण होगा। इन समस्याओं की जड़ें सत्ता, असमानता, व्यवहार और संस्थाओं में भी होती है। नैतिक प्रश्नों में सहमति विशेष रूप से जटिल है। आज की मशीनों में चेतना या अपनी इच्छा नहीं है, इसलिए वे मानव अर्थ में सहमति नहीं दे सकती। फिर भी उनका डिजाइन उपयोगकर्ता को इच्छा, अस्वीकृति और नियंत्रण के बारे में क्या सिखाता है, यह महत्वपूर्ण है। भविष्य में यदि प्रणालियां अधिक स्वायत्त दिखें तो यह प्रश्न और कठिन होगा। साथ ही इंटरनेट से जुड़े उपकरण और एआई साथ ही निजी बातचीत, पसंद और अंतरंग व्यवहार से जुड़ा अत्यंत संवेदनशील डेटा एकत्र कर सकते हैं। इसलिए गोपनीयता, साइबर सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बाद में जोड़े जाने वाले फीचर नहीं, बल्कि डिजाइन की शुरुआती शर्तें मानना चाहिए। निष्कर्ष में, टर्न्ड ऑन उन पाठकों के लिए उपयोगी है जो एआई, रोबोटिक्स, डिजिटल संबंधों, जेंडर राजनीति या सेक्स टेक को गंभीरता से समझना चाहते हैं, लेकिन केवल तकनीकी विवरणों की पुस्तक नहीं चाहते, या खास तौर पर विद्यार्थियों, डिजाइनरों, नीति निर्माताओं, मनोविज्ञान और मीडिया के पाठकों तथा उन लोगों के लिए प्रासंगिक है जो यह जानना चाहते हैं कि संवादात्मक एआई और कृत्रिम साथी हमारे संबंधों की आदतों को कैसे बदल सकते हैं। पाठक को इससे दो व्यावहारिक लाभ मिलते हैं। पहला, वह तकनीकी प्रचार और वास्तविक क्षमता में फर्क करना सीखता है। दूसरा, वह गोपनीयता, डिजाइन पक्षपात, भावनात्मक निर्भरता और सहमति जैसे प्रश्नों को अधिक सटीक ढंग से पूछ सकता है। समान विषय की कई किताबें सेक्स रोबोट को या तो भविष्य की अनिवार्य क्रांति या नैतिक पतन के प्रतीक के रूप में पेश करती है। डेब्लिन की पुस्तक की अलग पहचान उसका संतुलन है। वह ना तो मानवीय लगाव को उपहास में उड़ाती है, न मशीनों को सचेत प्रेमी मानती है। पुरातत्व, सांस्कृतिक इतिहास, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन और समकालीन सेक्स टेक को जोड़कर वह बताती है कि कृत्रिम अंतरंगता का प्रश्न दरअसल मानव अंतरंगता का प्रश्न है। पुस्तक का सबसे स्थायी योगदान यही है कि वह पाठक को किसी तैयार निष्कर्ष के बजाय बेहतर वैचारिक ढांचा देती है। हालांकि तकनीक पुस्तक के प्रकाशन के बाद बदलती रही है, इसकी बुनियादी कसौटियां, विशेषकर विविधता, जिम्मेदार डिजाइन और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं केट डेब्लिन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।